हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा का खून इस वक्त खौल रहा था। वो अपनी माँ नैना ओबेरॉय, उर्वशी खुराना और रणविजय के साथ बैठी हुई थी और उसके दिमाग में कोई बड़ी साजिश आकार ले रही थी और सभी के सभी गुस्से से लाल आंखों के साथ सामने रौनित को बैठे हुए देख रहे थे, क्योंकि झलक और सिद्धार्थ के बारे में उन्होंने हर तरह की तहकीकात कर ली थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। दादी का पारा पूरी तरह चढ़ चुका था, क्योंकि रणविजय ने उन्हें यकीन दिलाया था कि सिद्धार्थ इस तरह बिना वजह कहीं नहीं जा सकता, और अगर वो सच में झलक के पास गया होगा तो उसके बारे में अगर किसी को कुछ पता होगा तो वो रौनित ही होगा। इसीलिए दादी ने रौनित को बहाने से घर बुलाया, जहां पहले से ही आकांक्षा, नैना और रणविजय मौजूद थे। दादी ने रौनित को देखते ही तुरंत बंदूक उसकी ओर तान दी। रौनित के हाथ पूरी तरह कांपने लगे थे। वो दादी के गुस्से और सनक के बारे में अच्छी तरह जानता था। उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। दादी ने लाल आंखों से रौनित की ओर घूरते हुए कहा, हम तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करेंगे। अगर तुमने उसका सही जवाब नहीं दिया तो अगली बार ट्रिगर दबाने में हम जरा भी देर नहीं करेंगे। ये कहकर उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में सवाल किया। रौनित ने कांपती और टूटी फूटी आवाज में कहा, सिद्धार्थ बेंगलुरु में है और उन्हें झलक के बारे में सब पता चल चुका है। वो झलक से मिलने गए हैं। जैसे ही रौनित ने ये कहा, आकांक्षा और नैना के चेहरे पूरी तरह स्याह पड़ गए। अगर एक बार फिर झलक सिद्धार्थ की जिंदगी में लौट आई तो उनका पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ की आंखों में झलक के लिए जो प्यार था वो बहुत पहले ही सब देख चुके थे। उसने भले ही परिवार की इज्जत और नाम के लिए उसे तलाक दे दिया हो, लेकिन प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। ये बात रणविजय अच्छी तरह जानता था। आकांक्षा के तन बदन में आग लग थी। वो गुस्से से बोली, लगता है अब झलक को जाकर अच्छा खासा सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी के अभी हमारे टिकट बुक करो, हम आज ही वहां जाएंगे। लेकिन रात काफी हो चुकी थी, तभी रणविजय ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता चल चुका है कि सिद्धार्थ वापस आ रहा है, लेकिन उसके आने से पहले पहले हमें वहां पहुंचना होगा और झलक को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न करे। ये कहते हुए उन्होंने तुरंत प्राइवेट जेट तैयार करवाया और अगली सुबह चारों लोग गुस्से से भरे हुए वहां के लिए रवाना हो गए। उधर सिद्धार्थ ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लिया था कि झलक आज लंच के लिए एक रेस्टोरेंट जाने वाली है। देर न करते हुए वो भी वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ा। झलक ऑफिस का काम खत्म करके जैसे ही रेस्टोरेंट के लिए निकलने लगी, तभी दादाजी उसके ठीक सामने आ गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुमने पहले अनामिका को अपने साथ जाने से मना किया था, लेकिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उनकी आंखों और इरादों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन्हें मना करना आसान नहीं होगा, इसलिए झलक ने ना चाहते हुए भी उन्हें साथ चलने की इजाजत दे दी। जल्द ही दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। झलक के नाम से टेबल पहले से ही बुक थी। वो वहां पहुंची तो देखा कि आर्यन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। झलक को देखते ही वो मुस्कुराया, लेकिन उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये कौन है? आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। झलक कुछ कह पाती उससे पहले ही दादाजी मुस्कुराकर बोले, हम इनके दोस्त हैं। ये सुनकर आर्यन का दिमाग जैसे घूम गया। उसे सचमुच लगने लगा कि जो बातें ओबेरॉय परिवार से, खुराना परिवार से झलक के बारे में वो सुनता आया है, शायद वे सही हों। उसके मन में घटिया ख्याल आने लगे। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, झलक, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह किसी बुजुर्ग आदमी को अपना शुगर डैडी बना लोगी। मुझ में क्या कमी थी? तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट किया, दोस्ती से आगे कभी बढ़ने ही नहीं दिया। मैं मानता हूँ मेरा कैरेक्टर पहले थोड़ा खराब था, लड़कियों के मामले में मेरी इमेज अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। तुम चाहती तो हम अपनी जिंदगी साथ शुरू कर सकते थे। वो आगे बोला, देखो झलक, तुम्हारा किसी से भी रिश्ता हो, ये तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। आर्यन की बातें सुनकर झलक हल्का सा मुस्कुराई। उसने वेटर को आवाज दी, वॉटर प्लीज। वेटर तुरंत पानी लेकर आया। झलक ने बिना किसी जल्दबाजी के मेन्यू उठाया और शांति से ऑर्डर देने लगी। दादाजी की पसंद का खाना भी उसी ने ऑर्डर कर दिया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शर्म, बस एक अजीब सी आत्मविश्वास भरी शांति थी जिसने आर्यन को और बेचैन कर दिया। अब झलक ने अपने लिए सिर्फ उबला हुआ खाना मंगवाया था। उसने चिकन सूप भी बिना ज्यादा मसाले के पसंद किया। आर्यन हैरानी से उसे देख रहा था, तभी झलक ने नरमी से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आर्यन, तुम मेरे साथ यहाँ लंच करना चाहते थे ना, तो आराम से लंच करो और फिर यहाँ से चले जाओ, मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। अब आर्यन के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था। आखिर इस बूढ़े आदमी में ऐसा क्या है जो उसमें, एक जवान और हैंडसम लड़के में नहीं है। वो बार बार दादाजी को घूर कर देखने लगा। उधर दादाजी का मन तो जोर से हंसने का कर रहा था, लेकिन अभी वो झलक के प्लान में दखल नहीं देना चाहते थे, इसलिए पूरी तरह शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद झलक ने दादाजी की ओर देखकर पूछा, आपको भी कुछ चाहिए? दादाजी ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं नाश्ता करके आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर झलक हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर दूसरी ओर आदित्य को यह सब जानकर काफी बुरा लग रहा था। बलबीर जो लगातार दिग्विजय जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे बेचैन थे। कबीर की इन्वेस्टिगेशन से पता चल चुका था कि इस वक्त दिग्विजय जी झलक को लेकर रेस्टोरेंट गए हैं। उन्होंने सोचा, दादी पोती आखिर कहाँ पार्टी करने जा रही हैं, मैं अभी निकलता हूँ और अपने सवालों के जवाब लेकर ही रहूंगा। कबीर की बातों पर यकीन करते हुए वो कबीर को साथ लेकर सीधे रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। जैसे ही कबीर ने मैसेज करके आदित्य को बताया कि उसके दादाजी कबीर और अभय के साथ रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आदित्य को अजीब सा लगा। कबीर जानता था कि अगर बाद में आदित्य को पता चला तो उसे बुरा लगेगा और वो गुस्सा भी हो सकता है। आदित्य नहीं चाहता था कि उसकी और झलक की वजह से बड़ों की दोस्ती में कोई दरार आए, इसलिए वो भी फटाफट रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ा। उधर दिग्विजय जी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, हो सकता है ये बच्चा मेरे सामने अनकंफर्टेबल हो, आप दोनों आराम से अपना लंच एंजॉय कीजिए, मैं दूसरी टेबल पर बैठ जाता हूँ। ये कहकर वो झलक को वहीं छोड़ दूसरी टेबल पर जाकर थोड़ी दूरी पर बैठ गए, जहां से वो झलक आर्यन की बातें आसानी से सुन सकते थे और दादाजी को कोई जल्दी से नोटिस नहीं कर सकता था। वो थोड़ा साइड हटकर बैठे थे। वो जानते थे कि आज वहां क्या होने वाला था, इसलिए वो अभी सबके सामने आकर झलक का प्लान खराब नहीं करना चाहते थे। उनके जाते ही आर्यन फिर झलक की ओर झुककर बोला, देखो झलक, हो सकता है उस आदमी ने तुम्हें किसी दबाव में रखा हो, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं उसे अभी भी अच्छा खासा सबक सिखा सकता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरी बात मानो, सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। झलक बस मुस्कुराती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी वही शांत मुस्कान आर्यन को जहर जैसी लग रही थी। तभी अचानक दरवाजा तेजी से खुला और अंदर आए सिद्धार्थ खुराना। सिद्धार्थ को वहां देखकर आर्यन पूरी तरह घबरा गया और झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया। झलक ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो फिर से अपने सूप पर ध्यान देने लगी।
सिद्धार्थ की नजर जैसे ही आर्यन पर पड़ी, उसके माथे पर बल उभर आए। वो गुस्से से बोला, तू यहां क्या कर रहा है, चल क्या रहा है यहां, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी इसके प्लान में मिला हुआ है? इतनी हिम्मत तो तेरी कभी नहीं थी कि अकेले मेरे रास्ते में आ सके। सिद्धार्थ की आवाज सख्त और ठंडी थी। आर्यन ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ झलक से मिलने आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहां आओगे। ये सुनकर सिद्धार्थ ने लाल आंखों से झलक को देखा और कहा, तुमने अभी तक मेरी बातों का सीधा जवाब नहीं दिया, इसका मतलब साफ है आर्यन रायचंद भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है, इसीलिए तुमने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग की। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, इस तरह के दो कौड़ी के लोगों को साथ मिलाकर तुम हमें हरा सकती हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी साइड पर बैठे दादाजी ने अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू रखा। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। चाहते तो एक ही पल में सबको सबक सिखाकर वापस भेज देते, लेकिन झलक ने सख्ती से उन्हें मना किया था। वो साफ कह चुकी थीं, अगर वो उसके साथ चल रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह शांत रहना होगा और बीच में बिल्कुल दखल नहीं देना होगा।